ओम शांति। स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। स्मृति स्वरूप बनना अर्थात बाबा की स्मृति में निरंतर रहना, बाबा को निरंतर याद करना, बाबा की याद में सदा समाये रहना और समर्थ स्वरूप अर्थात सामर्थ्यवान स्वयं को अनुभव करना, सर्व खजानों से स्वयं को संपन्न अनुभव करना, बाप समान अपनी स्थिति को बनाना। तो बाबा मुरली में कहते हैं, मुझे याद करो, मेरी स्मृति में सदा टिके रहो। क्यों बाबा को याद करना जरूरी है, इस बात को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। जब हम यथार्थ रीति से उसके महत्व को जानते हैं तो उनके स्मृति में सदा रहने का पूरा प्रसाद भी करते हैं। तो बाबा की स्मृति में हमें क्यों रहना है? पहली बात, बाबा ही सर्व शक्तियों के सागर हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अखंड प्रचंड स्रोत हैं, स्पिरिचुअल पावर के पावर हाउस हैं। जब उनकी स्मृति में हम रहते हैं तो आत्मा में स्वतः ही शक्ति आती है और आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती है। ये सिद्धांत है कि एनर्जी हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है। अगर हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा से हमें शक्तियां मिलती हैं और किसी व्यक्ति को या वस्तु को हम याद करते हैं तो हमारी शक्तियां खर्च होती हैं, नष्ट होती हैं। तो इसलिए सर्वशक्तिवान बाप की स्मृति में सदा टिकना अति आवश्यक है। दूसरी बात, सारे संसार में एक बाबा ही एवर प्योर हैं और सर्व आत्माओं को प्योर बनाने का ठेका उन्होंने लिया है। पतित पावन बाबा को कहते हैं। अगर हम आत्माओं को याद करते हैं तो उनका शरीर भी अपवित्र तत्व से बना हुआ है और आत्मा भी अपवित्र है। तो बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बनती जाती है और उनको याद करने से हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो धीरे धीरे हटने लगता है, खत्म होने लगता है। और तीसरी बात, इस संसार में सबसे हमारा कल्याणकारी केवल एक बाबा ही है, सबके कल्याणकारी, सदा के कल्याणकारी, कल्याण के वो सागर हैं। बाबा चाहते हैं मेरा हर एक लाल माला माल हो जाए और मेरा नाम इस संसार में रोशन करें। ये आशा हम बच्चों से बाबा को हैं, हम सभी बाबा के आशाओं के दीपक हैं। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें श्रेष्ठ स्थिति बनाना जरूरी है, और श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए सदा उनकी याद में रहना जरूरी है। अभी बाबा की याद में हम निरंतर रहें, सदा उनकी स्मृति में समय रहें, उसके लिए मैं कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहूंगा, जिन बातों पर अगर आप दिल से अभ्यास करेंगे तो बाबा की स्मृति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। पहली बात, बाबा की स्मृति सहज अनुभव करने के लिए निराकारी बाप को सदा याद करने के लिए स्वयं को निराकारी आत्मा अनुभव करना जरूरी है। हम सभी कहते हैं हमारा प्यार निराकारी शिव पिता से है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस प्यार का प्रमाण है उनके जैसा सदा निराकारी स्वरूप में टिकना और उनके समान बनने का प्रसाद करना, ये प्यार की निशानी है। अगर हम ऐसा प्रसाद नहीं करते हैं तो कहने में आएगा कि हमारा हड्डी प्यार, जिगरी प्यार बाबा से उतना नहीं है जितना चाहिए। तो जितना हम स्वयं को आत्मा नेचुरल समझते हैं, निरंतर समझते हैं, सहज समझते हैं, उतना बाबा की स्मृति नेचुरल और सहज और निरंतर रहती हैं। क्योंकि जब हम स्वयं को देह समझते हैं तो हमारा मन और बुद्धि इसी देहधारी देह की दुनिया में पदार्थों के पीछे ही भागती है। लेकिन जैसे स्वयं को आत्मा अनुभव करते हैं तो मन बुद्धि हमारी स्वतः ही निराकारी दुनिया की ओर जाने लगती है। तो जितना हो सके हमें एकांत में बैठकर, इस मिट्टी के मकान में बैठकर स्वयं को विदेही आत्मा का अनुभव बढ़ाते रहना जरूरी है। मैं हूं देह से न्यारा, केवल एक चमकता हुआ दिव्य सितारा, ये मेरा असली स्वरूप है। इस स्वरूप में ही मैं आत्मा निराकारी दुनिया से यहां वापस आई थी, पाड़ बजाने आई थी। तो एकांत में बैठकर हमें विदेही स्थिति का अभ्यास को बढ़ाते जाना है। आत्मा की स्मृति आते ही बाबा की स्मृति आने लगती है। आत्मा की स्मृति जितनी नेचुरल होती है उतनी बाबा की स्मृति भी नेचुरल होती जाती है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा। आत्मा समझते ही बाबा की याद आती है और हमारे पाप भस्म होने लगते हैं। और सभी हम याद की यात्रा के लिए यहां बैठे हैं। सदा स्मृति में रहना अर्थात याद की यात्रा पर सदा चलते रहना। बाबा ने हम सभी को पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दी है, उस गाड़ी को हमें इस याद की यात्रा पर दौड़ाते रहना है। लेकिन जब तक स्वयं को स्टार नहीं समझते हैं, ये पुरुषार्थ रूपी गाड़ी स्टार्ट होती नहीं है। STAR स्टार समझते ही गाड़ी STARTस्टार्ट हो जाती है और निरंतर उसी यात्रा में हम सदा मस्त रहते हैं। दूसरी बात, सदा बाबा की स्मृति में रहने के लिए आवश्यकता है निरंतर स्वमानधारी होकर रहने का अभ्यास बढ़ाते रहना। आत्मा का अभ्यास करने से हम देह से न्यारे रहते हैं, लेकिन स्वमान में रहने से हम इस पुरानी दुनिया से न्यारे हो जाते हैं, उपराम हो जाते हैं। मन बुद्धि हमारी डिटैच होती है, हल्की फुल्की होती है और परम धाम की ओर जाने लगती है और बाबा के पास बैठ जाती है। अगर हम स्वमान में नहीं रहते हैं, ईश्वरीय नस्य की, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति नहीं करते हैं, तो हमारा मन और बुद्धि इसी साकारी दुनिया में ही भटकता रहता है, मटकता रहता है। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। दुनिया क्या है, असार संसार है, कोई सार नहीं है, नीरस दुनिया है, कोई रस इसमें नहीं है। 5000 वर्ष तक हमने इसको यूज किया है, अभी इसमें कोई भी रस बाकी नहीं है। इसलिए इस पुरानी दुनिया से हमें डिटैच रहना है, बेहद का वैराग्य अनुभव करते जाना है। लेकिन उसके लिए ईश्वरीय नशे में जब हम मस्त रहते हैं, तो हम सभी बहुत रॉयल आत्माएं हैं। देखो अभी अभी हम सुन रहे कि मिस इंडिया करके एक व्यक्ति का, एक फीमेल बहन का सिलेक्शन हुआ है, तो मिस इंडिया का टाइटल मिलते ही, ताज मिलते ही क्या नशा उनको चढ़ा हुआ है, क्या मस्ती चढ़ी है, मैं मिस इंडिया हूं। बहुत अच्छी बात है, सिलेक्शन हुआ है। तो हम विश्व के रतन हैं और हमारा सिलेक्शन किसी व्यक्ति ने नहीं किया है, स्वयं भगवान ने किया है और करोड़ों आत्माओं में किया है। भाई ताली तो बजाओ जरा। करोड़ों आत्माओं में सिलेक्शन किया है स्वयं भगवान ने, और सिलेक्ट करके स्वमान के सिंहासन पर बिठा दिया है। बाबा कहते हैं मेरी एक चाहना है, कौन सी, मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं और हमें वो पूरी करनी है। राजा सिंहासन पर बैठता है और राजा शासन करता है प्रजा पर, तो हम आत्मा रूपी राजाओं को बाबा ने स्वमान का सिंहासन दिया है और उस स्वमान के सिंहासन पर जब हम बैठते हैं, तो मान बुद्धि और जो स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया हैं, कर्मचारी हैं, वो हमें सल्यूट मारते हैं, हमारे नियंत्रण और अनुशासन में रहते हैं। इसलिए स्वमान के सिंहासन को हमने छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी कोई माया अपोजिशन करें, हमने अपनी पोजिशन को नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम होनहार राजे महाराजे हैं। बाबा कहते हैं आने वाली सतयुगी नई दुनिया में इतने जो सिंहासन राजा महाराजाओं के हैं, आपके बिना मैं किसी को बिठा नहीं सकता हूं, आप ही उसके लायक हैं। तालियां बजाओ ना भाई। लेकिन उस सिंहासन पर बैठकर जो मस्ती, आपको नशा होना चाहिए, वो नशा अभी आत्मा में धारण करना होगा। परमधाम में जाकर जैसे या थोड़ा रेस्ट करके आएंगे और सिंहासन पर बैठेंगे, वही नशा वही मस्ती आपके चेहरे पर होगी। तो वो हमें अभी धारण करना है। जैसे राजकुमार की ड्रेस होती है विशेष, तो हम ईश्वर के बच्चे ईश्वरीय कुमार हैं और ईश्वरीय कुमारों की ड्रेस है ईश्वरीय नशा। ईश्वरीय नशे की ड्रेस पहनकर ही हमने कर्म क्षेत्र पर उतरना है। तो आप देखेंगे सारे दिन भर में एक अलौकिक मस्ती आपको रहेगी और वो मस्ती आपको बाबा की याद सहज दिलाएगी। ठीक है। तीसरी बात, बाबा की स्मृति में सदा रहने के लिए सारे दिन भर में हमें बाबा को अलग अलग रूप से याद करना है। क्या है ये मनुष्य की टेंडेंसी है, वो हमेशा न्यूनेस चाहता है। अब बिंदी समझकर बिंदी बाप को याद करे भाई, एक घंटा दो घंटे के बाद बोर हो जाता है। तो याद में सदा रुचि बनी रहे उसके लिए विभिन्न रूप से हमें संबंधों के रूप में बाबा को याद करते रहना है। बाबा स्वयं कहते हैं 24 घंटे में अपनी कंपनी आपको देने के लिए तैयार हूं। खुद बाबा खुद भगवान ऑफर कर रहे हैं। तो हमने बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, क्योंकि उनको एक सेकंड भी याद करते हैं, एक सेकंड भी उनकी स्मृति में रहते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें होती है। उनके स्मृति में रहने से कितने लाभ होते हैं, उनके स्मृति में रहने से हमें सुकून मिलता है, उनके स्मृति में रहने से हमें परम सुख की अनुभूति होती है, उनके स्मृति में रहने से शक्तियां मिलती है, विक्रम भस्म होते हैं। तो उनकी कंपनी में उनकी स्मृति में बहुत अच्छी तरह से सारे दिन भर में रहें। इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक विभिन्न रूप से हमें बाबा को याद करते रहना है। तो कितना संबंध के रूप में याद करेंगे बताइए। हाँ जी, बाबा कहते यूज मी, 24 घंटे में आपकी सेवा में तैयार हूं। यूज मी और यू कैन लूज मी, दैट इज अप टू यू। भी हमने बाबा को फ्री नहीं छोड़ना है, कुछ काम नहीं, बाबा बैठे रहो, यहां मेरे बाजू में बैठे रहो, मुझे देखते रहो और मुझे सकाश देते रहो, बस और कुछ नहीं करना है। बाबा बैठेंगे और बाबा आपको कंपनी देंगे। बाबा कहते मैं आपका आज्ञाकारी सेवक हूं। बताओ भाई, ओबीडियंट सर्वेंट है बाबा कहते हैं। तो हमने वो सेवा का पूरा चांस लेना है। तो सारे दिन भर में कितने संबंधों के रूप में याद करना है भाई, हैं जी? हाँ जी, सर्व में 11 संबंध लिखो फटाफट। अमृत वेले आंख खुलती है, बाबा को बाप के रूप में याद करना है और निस्वार्थ प्यार बाबा का मुझे अनुभव करना है। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर उनकी गोदी में बैठना है, खेलना है, आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बन के रहना है। जैसे अपने सेवा केंद्र पर जाते हैं परम शिक्षक के रूप में हमें बाबा को याद करना है, अनुभव करना है, मेरे शिक्षक का हाथ मेरे सिर पर सदा बना रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट बहुत होमवर्क करके तैयारी से आते हैं उनके सिर पर टीचर का हाथ रहता है। हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि भगवान हमें निराकार भगवान साकार रूप में हमें पढ़ाएंगे, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। जैसे सेवा केंद्र से आप बाहर जाते हैं, घर जाते हैं, बाबा को सदगुरु के रूप में अनुभव करो, बाबा का वरदानी हस्त जो है अपने सिर पर अनुभव करो और सारे दिन भर में उनकी ही छत्र छाया में चलते रहो, पलते रहो, वरदानी मूरत बनते रहो। चौथा संबंध, बाबा के आम सभी बच्चे हैं, हम आम बच्चे नहीं हैं, हम खास बच्चे हैं। भाई खास बच्चे कौन से हैं? हाँ जी बोलिए ना, खास उल्टा क्या है? सखा। जो भगवान को सखा के रूप में अनुभव करते हैं वो बाबा के खास बच्चे कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्या उसके पीछे राज हैं? क्योंकि हम अपने दिल का सीक्रेट है माँ से, बाप से, चाचा से, सबसे छिपाते हैं। जहां हमें सखा मिल जाता है हम सारा दिल का राज उनके पास खोल देते हैं। तो हमें भगवान को खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करना है। और आप देखना, अंतिम समय आपको कोई भी मदद करने के लिए नहीं दौड़ेगा, आपका दोस्त नंगे पैर भागा भागा आके आपको मदद करेगा। इसलिए भगवान के साथ मेरी गहरी दोस्ती हो। मैंने जो पवित्रता का प्रॉमिस किया है उस प्रॉमिस को मैंने बखूबी निभाना है, क्योंकि ये मेरा दोस्त अंत तक मेरे काम में आएगा, मदद करता रहेगा। पांचवा संबंध, बाबा कहते हैं मुझे बच्चे के रूप में अनुभव करो। चाहे समर्पित है बाप या कुमार है, कुमारियां है, कोई भी हैं, आप बाबा को बच्चे के रूप में अनुभव कर सकते हैं। और जो आपकी कमाई है सूक्ष्म रीति से स्थूल रीति से, उस कमाई का हिस्सा आपको अपने बच्चे को बाबा को जरूर देना है, क्योंकि ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है। और ये लौकिक बच्चे तो हमें स्मशान तक लेके जाएंगे, ये बच्चा तो हमें सतयुग में ले जाता है, परम धाम तक ले जाता है, और हर पल हर घड़ी हमें मदद करने के लिए आता है। तो इसलिए बच्चे को हमें वर्षा जरूर देना है। फिर छठवां अनुभव, बाबा को मां के रूप में अनुभव करना है। लोग कहते हैं मैं सबको भूल सकता हूं, लेकिन जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मुझे पेट में पाला है, गंदगी से निकाला है, मेरे लिए कई रातें नींद को त्यागा है, उसका प्यार, उसकी ममता को मैं भूल नहीं सकता हूं, सकती हूं। ऐसे कहते भाई 83 जन्मों की मां को तो छोड़ दिया, अभी 84 मां के इसमें फंस गए, अभी उससे भी निकलना है। तो बाबा को मां के रूप में अनुभव करना है। वे कितनी मां है आपको बताओ, इतने सारे बाबा के बच्चे बैठे, बोलो ना कितनी मां है? इतना प्यार आपको मां का मिल रहा है, कितनी मां है बोली ना? हाँ जी, चार, तीन है बहन जी को, कितने हैं? दो है आपको, भाई लोग बोलो, हैं जी? छह मां, लिखो फटाफट। एक तो जिसने जन्म दिया है, शरीर का ढांचा जिसके पेट में बना हुआ है, लौकिक मां। दूसरी ब्रह्मा मां जिसके मुख से मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण जन्म। तीसरी मम्मा जो अभी भी हमें सूक्ष्म रीति से पालना दे रही है। चौथी ड्रा मां, जब भी हमारे मन में कोई व्यर्थ संकल्प का तूफान उठता है, ड्रामा रूपी मां हमें अपने आंचल में छिपा लेती है और व्यर्थ संकल्पों से बचा लेती है। और फिर पांचवी है धरती मां, भारत मां, जिसके इसमें मिट्टी से ये शरीर बना हुआ है। और छठवी सबसे बड़ी परमात्मा। बाप रे, इतना प्यार मिल रहा है आपको, इतना प्यार मिल रहा है, कितने लाडले बच्चे हैं आप। तो बाबा को हमें मां के रूप में अनुभव करना है, लौकिक मां से थोड़ा सा डिटैच होना है, और बहुत अच्छी तरह से उस मां का दुलार प्यार अनुभव करके अपने दिल को भरपूर करना है। सातवां संबंध, बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूं। अब क्या है, बहनें तो इसको संबंध को स्वीकार कर लेती हैं, लेकिन भाइयों को थोड़ा सा अहंकार आता है, मैं सजनी कैसे बनूंगा? भाई देखो, जब तक आप सजनी नहीं बनोगे आपका उद्धार नहीं होने वाला है, सीधी बात कह रहे हैं। हम सभी आत्माओं रूपी सीताएं, वो हमारा राम है, रावण की जेल से निकालने के लिए वो हमें आया है। तो मैं भाई नहीं हूं, मैं आत्मा सजनी हूं, वो मेरा सलोना सजन है, जिसके साथ मैंने प्यार का सौदा किया है, उस प्यार के सौदे में मुझे थोड़ी भी हेरा फेरी नहीं करना है, सच्चाई रखना है, ये मेरा साजन चाहता है। साजन कहता है, भाई आपके दिल तख्त पर मैं बैठने के लिए तैयार हूं, तीसरे को किसी को बिठा दिया तो मैं उतर जाऊंगा, आपके तीसरे नेत्र में मुझे आपने अपने साथ बिठा दिया, किसी तीसरे को बिठा दिया तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। भाई साजन के साथ तो थोड़ी वफादारी हमने रखनी है ना, ठीक है ना भाई। आठवां संबंध, बाबा मेरा गाइड है। जब भी मन हमारा बुद्धि दुविधा में होती है, हम मूंज जाते हैं क्या करो क्या न करो, गाइड को बुलाओ और बाबा को बोलो, बाबा मुझे गाइडेंस चाहिए। अभी दुनिया वाले गाइडेंस देंगे, उनका स्वार्थ उसमें होगा और वो कल को भी पता नहीं है क्या होने वाला है। ये गाइड तो तीनों कालों को जानने वाला है और निस्वार्थ गाइडेंस हमें देने वाला है, उसमें मेरा कल्याण होगा। आप देखना अंतिम समय बाबा लिटरली हमें गाइडेंस करेंगे, इधर नहीं जाओ इधर जाओ, ये नहीं करो ये करो, और उसमें ही हमारा कल्याण समाया हुआ होगा। लेकिन उसके लिए हमें वॉइसलेस वायरलेस सेट हमेशा ऑन रखना होगा, बाबा से कनेक्शन जोड़कर रखना होगा। बाद में नौवां संबंध है, बाबा मेरा रक्षक है, प्रोटेक्टर है। हर कोई चाहता है मेरे सिर पर किसी का हाथ हो, मेरा कोई बैकबोन हो, सर्वशक्तिवान बाप का हाथ आपके सिर पर है तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहेगा, निर्भय होकर आप रहेंगे। राजा महाराजा बनने का पहला गुण है निडरता निर्भयता, तो उसके लिए हमें बाबा को अपना रक्षक अनुभव करना है। और फिर दसवां संबंध है, बाबा रूहानी सर्जन हैं। कोई भी हमारी पुरानी बीमारी है, कोई पुराना संस्कार है, उसको हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है, कोई बात नहीं, बाबा को आह्वान करो, आओ सर्जन के रूप में और इसकी सर्जरी करो, इस बीमारी से मुझे मुक्त करो, बाबा करेंगे। जैसे डॉक्टर को हम शरीर के द्वारा समर्पित हो जाते हैं, हाँ तालियां बजाओ ना जरा अच्छी तरह से बजाओ ना। देखो हमारी सेवा में हमेशा वो हजूर हजीर रहता है, तो पुरानी बीमारी कोई भी है उससे हमें सर्जरी करना है, बीमारी से फ्री हो जाना है। और ग्यारहवां संबंध है, बाबा को धर्मराज के रूप में भी अनुभव करना है। बाबा धर्मराज के रूप में मुझे हमेशा देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, इसलिए मैं कभी भी छोटी मोटी गलती भूल नहीं कर सकता हूं। अगर करती हूं तो बाबा डंडा लेकर धर्मराज के रूप में भी खड़ा है। हम बाबा के पास आए वंडरफुल स्थिति बनाने के लिए, तो ये वंडरफुल स्थिति कैसे बनाएंगे? हां जी, वंडरफुल, एक का डर फुल होगा, पूरा होगा, तो आपसे कोई गलती होगी नहीं, हमेशा आप अच्छे ही काम करते रहेंगे और आपकी स्थिति महान श्रेष्ठ बनती जाएगी, ठीक है भाई। अभी सदा बाबा की स्मृति में रहने के लिए चौथी बात, साक्षी दृष्टा होकर हमें इस ड्रामा को देखना है, क्योंकि जब तक साक्षी दृष्टा नहीं होते हैं तब तक बाबा को साथी नहीं अनुभव कर सकते हैं। जैसे शिव बाबा परम धाम से इस बेहद के ड्रामा को साक्षी होकर देख रहे हैं, बिल्कुल न्यारे प्यारे हैं, कोई रो रहा है कोई हंस रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बाबा देखते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से इस ड्रामा को साक्षी होकर देखते हैं, हमें भी अपने पार्ट को और अन्य सभी के पार्ट को साक्षी होकर देखना है, तो बाबा की स्मृति सहज अनुभव होती है। पांचवी बात, सदा स्मृति स्वरूप बनकर रहने के लिए हमें दृढ़ लक्ष्य रखना है, दृढ़ संकल्प करना है कि याद और सेवा का, स्मृति में रहना और सेवा करते रहना, इसमें बैलेंस रखना है। बाबा ने कहा है, आप अच्छा अमृत वेला करते हो, मुरली अच्छी तरह से सुनते हो, लेकिन जैसे कर्म क्षेत्र में जाते हैं योग को किनारे रख देते हैं। तो इसलिए मुझे सारे दिन भर में कर्म और योग का बैलेंस रखना है, ऐसा लक्ष्य रखेंगे तो कर्म में योग और योग में कर्म विशेष रखने का ध्यान आप करेंगे और बाबा की याद अच्छी तरह से बढ़ती जाएगी। क्योंकि हम महान आत्माएं हैं, साधारण हम कर्म नहीं कर सकते हैं, हमें प्रेरणा देने वाले विशेष कर्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सारे दिन भर कमल आसनधारी बनकर कर्म करना है और बाबा की याद में स्मृति में सदा रहना है। ठीक है भाई, छठवीं पॉइंट, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए सबके प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखते जाना है। किसी के भी प्रति हमें अशुभ भावना, नेगेटिव भावना नहीं रखना है। चाहे कोई कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करता है, उनका हमारे साथ अनबन होता है, फिर भी हमने उस आत्मा के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है। क्यों भाई ये जरूरी है, क्योंकि जब हम एकांत में बैठते हैं तो जिस आत्मा के प्रति हमारे मन में अशुभ भावना, ईर्ष्या, द्वेष की भावना होती है, वो हमारे बुद्धि में टपक पड़ता है, बाबा की स्मृति टूट जाती है। जिससे बहुत प्यार है वो व्यक्ति आएगा बुद्धि में, या जिससे हमारी नफरत है या द्वेष ईर्ष्या की भावना है, वो दोनों में से कोई ना कोई हमारी बुद्धि में आ जाता है और बाबा की स्मृति टूट जाती है। तो हमें हमेशा सबके प्रति शुभ भावना सदा रखना है। बड़ा जो व्यक्ति होता है, बड़े व्यक्ति का दिल बड़ा होता है, उसके मन में क्षमा भावना होती है। कोई अगर अच्छा व्यवहार नहीं भी करता है, कोई बात नहीं, उसके प्रति भी हमें क्षमा भाव रखना है और शुभ भावना, शुभ कामना सदा रखनी है और अपने को फ्री रखना है। क्योंकि शुभ कामना जब रहती है ना, तो मन बुद्धि हमारी सबसे फ्री रहती है, न्यारी रहती है, खुशी में मस्त रहती है, सकारात्मक दृष्टिकोण सबके प्रति रहता है और बाबा की स्मृति बहुत सहज रहती है। ठीक है ना भाई। बाद में सातवीं पॉइंट, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए हमें बाबा की स्मृति को बढ़ाने के लिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद का चार्ट ही हमें स्मार्ट बनाता है। याद का चार्ट रखने से मन और बुद्धि पर हमारा अटेंशन बढ़ता है। क्योंकि ये आत्मा रूपी माँ के दो बच्चे हैं, द्वापर युग से ये माया के संग में रहे, इन्होंने बहुत शैतानी की है, हमारे पास जो भी खजाने थे सारे खजाने लुटा दिए, हमें कंगाल बना दिया है। अभी इन्हीं दोनों बच्चों को हमें ट्रेनिंग देना है और सुधारना है और बाबा की स्मृति में बिजी रखना है। तो डिसिप्लिन में रखना, बिजी रखना, उसके लिए चार्ट हमें बहुत मदद करता है। याद का चार्ट सारे दिन भर में, अलग अलग एक्सरसाइज आप हर घंटे में ले सकते हैं, दो घंटे में, और चेक कर सकते हैं इस एक घंटे या दो घंटे में मैंने कितना बाबा को याद किया या उस एक्सरसाइज को कितना प्रैक्टिकल में लाया। तो धीरे धीरे क्या होती है, मन बुद्धि पर हमारा अटेंशन बढ़ता है और स्मृति भी बढ़ती है, कमाई भी हमारी बढ़ती जाती है। और चार्ट न रखने से ये दोनों शक्तियां आवारा की तरह बिल्कुल इधर उधर भटकती रहती है। हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। मन मेरा है और मेरे कंट्रोल में नहीं है, शोभा नहीं देता है। इसलिए चार्ट हमारी रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाता है। सतयुग में राजा महाराजा रानी महारानी बनना है तो ये दो शक्तियां आपके पास चाहिए। ये दो शक्तियां नहीं तो राजा महाराजा नहीं बन सकते हैं। लेकिन चार्ट हमें इन दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए मदद करता है। मैं जब मधुबन में आया तो 6 साल तक चार्ट रखा, हर घंटे की अलग अलग एक्सरसाइज करता था और चेक करता था कि 1 घंटे में मेरी बाबा को याद करना कितना रहा, वो चेक करता था। तो धीरे 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 मेरा याद का चार्ट बढ़ता रहा, उसमें स्थिति मजबूत होने के लिए बहुत मदद मिली मुझे। तो अटेंशन उन दोनों शक्तियों पर, वॉचमैन बिना पैसे का वॉचमैन को ड्यूटी देना है, भाई देखो मेरा मन क्या सोचता है, मेरी बुद्धि कहाँ जाती है, वो बाबा पर बैठनी चाहिए, इधर उधर जाती है तो चेक करके चेंज करना है, बाबा पर बिठा देना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट कौन सी, 8वीं पॉइंट, सदा स्मृति स्वरूप सो समर्थित स्वरूप रहने के लिए हमें व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करना जरूरी है। बाबा ऊपर से देख रहे हैं मेरे बच्चे आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए योग हर रोज करते हैं, लेकिन पता नहीं चार्ज क्यों नहीं होती रही, चार्ज क्यों नहीं हो रही है। इतना लंबा समय से चार्ज कर रहे, 10 साल से, 5 साल से, 8 साल से, भाई मोबाइल की बैटरी तो 2 घंटे में चार्ज होती है, ये बैटरी इतने वर्ष तक क्यों लग रहा है। क्योंकि थोड़ी सी शक्तियां हम बाबा से ले लेते हैं और थोड़ी यूज भी करते हैं और थोड़ी शक्तियां लीकेज भी होती है। अभी लीकेज को स्टॉप करेंगे तभी शक्तियों का स्टॉक होगा, तभी समर्थ स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप हमें अनुभव होगा। अब ये लीकेज कैसे स्टॉप करेंगे भाई, उसके लिए 3 युक्तियां हैं। व्यर्थ के लीकेज को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मस्तक पर फुल स्टॉप लगाना है और सामने जो भी व्यक्ति आती है उसके मस्तक पर हमें फुल स्टॉप लगाना है, आत्मा समझकर आत्मा भाई भाई देखना है और एक पिता की संतान है, बस बात खत्म। वी आर द सोल्स चिल्ड्रेन ऑफ वन एंड सेम फादर, एक ही बाबा के बच्चे हैं। अगर हम देह के रूप में देखते हैं तो ये बहन जी का नाम ये है, इन्हों में ये अच्छे गुण हैं, इन्हों में ये कमियां हैं, ये यहां से आई है, बिना मतलब 5-7 संकल्प चल पड़ते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए फुल स्टॉप हमें लगाना है आत्मा का। दूसरी युक्ति, कोई अनहोनी होती है, अच्छी बात होती है तो भी हम 50ों को बता के घूमते हैं फिरते हैं, और कोई अनहोनी होती है तो भी हमारे मन में व्यर्थ संकल्प का बहुत तूफान उठता है जिससे बहुत आत्मा की एनर्जी वेस्ट होती है। इसलिए हमें ड्रामा का ज्ञान तो है लेकिन उसको यूज करना है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगाना सीखना है। जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है केवल रिपीटेशन हो रहा है, तो व्यर्थ संकल्पों से हम बचे रहते हैं। और तीसरी युक्ति है, खाली मन शैतान का घर, मन को अगर आप फ्री रखेंगे, खाली रखेंगे तो वो व्यर्थ संकल्प चिंतन करेगा, शैतानी करेगा, इसलिए उसको ज्ञान का भोजन हमें खिलाते रहना है तो व्यर्थ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और समर्थ बढ़ता जाएगा, लीकेज स्टॉप होता जाएगा, शक्तियां बढ़ती जाएगी। इसलिए इस लीकेज को भी हमें बंद करना होगा, हमें चेक करना है कि व्यर्थ के लीकेज को किसी भी हालत में स्टॉप करना है। अभी ये आत्मा रूपी बैटरी तेजी से चार्ज हो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई? चार्ज तो हम कर रहे हैं लेकिन बहुत लंबा समय चल रहा है, अभी समय तो जास्ती नहीं है, बहुत थोड़ा समय बाकी है आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए। और हमने घर वापस जाने के पहले आत्मा की बैटरी को फुल चार्ज करना है, 5000 वर्षों तक उस बैटरी को यूज करना है। तो क्या करें भाई? क्योंकि हम थोड़ी सी शक्तियां ले लेते हैं बाबा से, अमृत वेले योग से, नुमा शाम के योग से, और सारे दिन भर में हजारों संकल्प मन में उत्पन्न करते हैं, वो शक्तियां यूज भी करते हैं। बैटरी का कांटा आगे बढ़ता ही नहीं है, करे क्या? उसके लिए बाबा ने इशारा दिया है, शक्तिशाली योग को बढ़ाते चलो। शक्तिशाली योग से क्या होगा? शक्तियों का जमा का खाता बहुत बढ़ेगा, थोड़ी शक्तियां खर्च होगी और बचत शक्तियों का बहुत होगा और बैटरी तेजी से चार्ज होने लगेगी। बैटरी चार्ज हो रही है उसकी निशानी क्या है भाई? आत्मा की बैटरी बहुत अच्छी तरह से चार्ज हो रही है योग के द्वारा, उसकी निशानी क्या है? हाँ, चेहरा हमारा चार्ज हुआ होगा, बुझा हुआ चेहरा माना एकदम उदास चेहरा, चार्ज माना खुशनुमा चेहरा। बाबा से हमें शक्तियां मिल रही है, खुशी मिल रही है, नशा अनुभव हो रहा है, तो चेहरा हमारा हरा भरा हो। एक स्लोगन लिखो, मस्कान के बिना मुख खिलता नहीं। चेहरा कितना भी सुंदर होगा उस पर मुस्कुरान नहीं होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी, कोई भी देखना नहीं चाहता है। मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्य ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं। तो हमारे चेहरे पर रूहानी मुस्कुराहट सदा होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि ये रूहानी फूलों का बगीचा, बाबा जो बागवान हैं, माली हैं, वो हर रोज इस बगीचे को ज्ञान और योग के जल से सींचते हैं। और वो चाहते क्या है? मेरे बगीचे का रूहानी गुलाब बहुत खिला हुआ हो, केवल खिला नहीं बहुत खिला हुआ हो, है ना भाई? क्योंकि हम हीरो एक्टर हैं इस बेहद के ड्रामा में, हीरो एक्टर हैं। हीरो एक्टर को सभी देखते हैं, हीरो एक्टर किसी को नहीं देखता है, सबका ध्यान हीरो एक्टर पर होता है। इसलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने के पहले आपको पड़ोसी भी नहीं देखता था, लेकिन जैसे बाबा के पास आए हजार आंखें आपको देखते हैं हमेशा, क्या करते, कहां जाते, क्या खाते, क्या क्या, सारा ध्यान रखते। मैं एक बार यहां से अबू रोड से अहमदाबाद जा रहा था ट्रेन से, एसी के कोच में था और दूसरे कंपार्टमेंट में दूसरे कुछ नॉन बीके लोग बैठे थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। ये बीके लोगों को पहचानने की क्या निशानियां हैं? मैं थोड़ा सा कान लगा के सुनता था, सुन रहा था कि भाई कर कह क्या रहे ये भाई। बीके के कपड़े भले हो, रंगीन हो, सफेद हो, कोई बात नहीं, लेकिन दो निशानियां उनके चेहरे पर दिखाई देती है। अब कौन सी निशानियां हैं वो मैं सुन रहा था ध्यान से भाई। बीके की पहली निशानी है उसके चेहरे पर खुशी होगी। आप देखो लोगों के चेहरे उजड़े हुए हैं, बुझे हुए चेहरे हैं, मुश्किल से एक आधा चेहरा खुशनुमा चेहरा दिखाई देगा, लेकिन बीके माना हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा, खुशनुमा चेहरा। फिर दूसरी निशानी क्या बोल रहे थे वो? बीके माना उनके चेहरे पर चमक जरूर होगी, प्यूरिटी की चमक जरूर होगी। ये अज्ञानी लोग मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। ये प्रत्यक्षता है बाबा के बच्चों की। तो पवित्रता की चमक और रूहानी मुस्कुराहट, ये हमारे चेहरे पर हमेशा छाए हुए हो। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा है आपको अपने चलन और चेहरे से आगे चलकर बहुत सेवा करनी होगी, क्योंकि लोग अभी सुनना नहीं चाहते हैं, सुन सुन के वो थक चुके हैं, वो अभी देखना चाहते हैं। जो ज्ञान आप दे रहे हैं, जो ज्ञान आप सुना रहे हैं, वो आपके जीवन में प्रैक्टिकल वो देखना चाहते हैं। तो वो कैसे देखेंगे? चेहरा हमारा खुशनुमा होगा तो ऑटोमेटिक ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। ठीक है भाई। और दसवीं बात, सदा स्मृति स्वरूप रहने के लिए हमें मन मना भव का मंत्र का जाप तो हम करते हैं, लेकिन उस जाप के साथ साथ मध्याजी भव के मंत्र का जाप भी करते रहना है। क्योंकि कोई भी काम हम करना चाहते हैं, करने के पहले सोचते हैं मुझे इससे मिलेगा क्या, ये सोचते हैं। भाई आप अपने स्थान से यहाँ आए, सोच कर आए ना कि भाई मधुबन में जाने से मुझे मिलेगा क्या। भाई बहुत सुंदर अनुभव होंगे, बहुत अच्छी प्राप्तियां होगी, शक्तियां जमा होगी, ये प्राप्तियां होगी, तभी तो आप यहाँ आए ना। तो मनमना भव का मंत्र का जाप करने से हमें 21 जन्मों का लड्डू, बादशाही का लड्डू बाबा दे रहे। इतना बड़ा लड्डू कोई दे रहा है भाई? कोई है दुनिया में? कोई स्टूडेंट जो है वो दो चार साल, चार पांच साल, छह साल पढ़ते हैं, उनके माँ बाप कहते हैं भाई तुमने परीक्षा में बहुत मेहनत किया, ये लो पैसा और जाओ कश्मीर घूम के आओ, कुल्लू मनाली घूम के आओ, अवार्ड देते हैं उनको, बख्शीश देते हैं। तो अभी बाबा हमें देखो, संगम के कुछ एक वर्ष हम मेहनत करते हैं, स्टडी करते हैं, और बाबा हमें कितना बड़ा अवार्ड देते हैं, 21 जन्म तक आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल खाना पीना, मौज मस्ती करना, रास करना, पिकनिक करना ना, बस यही काम करना है। कितना बड़ा अवार्ड हमें बाबा देते। लेकिन इतना बड़ा अवार्ड मिलने के बाद भी कभी कभी हमारी रुचि मन मना भव के मंत्र का जाप करने में होती है, क्योंकि ये हम भूल जाते हैं, माया हमें अपने तरफ आकर्षित करती है। बाबा ने तो लड्डू दे दिया, अब माया भी हमें लड्डू देने के लिए चाहती है, अपने तरफ आकर्षित करती है, है ना भाई? माया के लड्डू कौन से है? आओ कहती, आओ मेरे पास आओ, मैं भी लड्डू देती हूँ। अब माया के लड्डू ऐसे हैं जो खाएगा वो भी पछताएगा, जो नहीं खाएगा वो भी पछताएगा। कौन से लड्डू है भाई? रूप और रुपया, ये दो लड्डू माया के हैं। माया हर पल हर घड़ी हमें अपने तरफ आकर्षित करती रहती है, रूप और रुपया के आकर्षण से। हमें सोचना है भगवान ने, मेरे बाप ने मुझे बहुत बड़ा लड्डू दिया है, तुम मुझे क्या देगी? इसलिए हमेशा कहते हैं ना, जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती। बहुत मस्ती में जब हम रहते हैं तो माया हमारे पर वार नहीं कर सकती है, वार करेगी भी तो भी उसका कोई असर नहीं रहता है, हम बिल्कुल न्यारे प्यारे निर्लिप्त होकर रहते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से बीच बीच में मध्याजी भव के मंत्र का जाप हमें करते रहना है। तो जनवरी मास आ रहा है, इस जनवरी मास में हमने बहुत अच्छी तरह से कमाई करना है। देखो दुनिया में कई लोग सीजन में खूब कमाते हैं, एक मास दो मास और सारा साल अच्छी तरह से मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये जनवरी मास हमारा अगर पावरफुल हम बनाते हैं, बहुत अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप बनते हैं और स्थिति को पावरफुल बनाते हैं, तो इस मास का प्रभाव सारे 11 मास पर पड़ता है, सारे साल पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें इस जनवरी मास के एक एक दिन को बहुत अच्छी तरह से सफल करते जाना है, स्मृति स्वरूप बनते जाना है। जनवरी मास हमें क्या कहता है, हे जन छोड़ो वरी, जन वरी, हे जन छोड़ो वरी, कोई चिंता नहीं करना है, कोई वरी नहीं करना है, एक ही वरी करना है, मुझे ब्रह्मा बाप समान कैसे बनना है, ये वरी हमारी होगी, उसी में हमारा कल्याण होगा और बहुत अच्छी तरह से स्मृति स्वरूप हम बनते जाएंगे। इसलिए बस याद 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 याद, यही हमेशा तात और लात लगी रहे, क्योंकि हमारी रेस किस में है भाई, है जी, हमारी रेस है योग में। कितना स्मृति स्वरूप आप सारे दिन भर में रहते हैं, कितने पल सफल करते हैं, उसमें हमारी रेस है। एक एक सेकंड हमें मिल रहा है, एक एक पल हमें मिल रहा है, तो एक एक पल को हमें बाबा की स्मृति में सफल करते जाना है। समय मेरा सफल हो रहा है कैसे पता चलेगा भाई, सफल अर्थात अच्छा फल प्राप्त करना, माना सफल मेरा समय हो रहा है ना, नहीं तो मेरा समय मेरे हाथ से जा रहा है। देखो बाबा इधर हमें पूरा गोल्डन चांस दे रहे, कमाई खूब करो, बाबा तो चांस दे रहे हैं, लेकिन माया भी उस कमाई में बाधा डालती है, विघ्न डालती है। किस प्रकार से विघ्न डालती है भाई बताओ, हैं जी बोलिए। बाबा तो खुली छुट्टी दे रहे भाई, जितना मर्जी कमाई करो, लेकिन माया भी उसमें विघ्न डालती रहती है। हमारे समय का जो खजाना है उसको बर्बाद करने के पीछे ही लगी रहती है। कैसे करते बताओ ना, ये सारे साइंस के साधन जो है, हरेक के हाथ में मोबाइल का खिलौना है, बच्चे के हाथ में खिलौना होता है ना, बच्चा खेलने में रहता है ना, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, ये सारे इंटरनेट है, लगे रहते इस सारे समय को बर्बाद करने वाले साधन है। ये बाबा जो हमें कमाई के लिए चांस देते हैं, तो माया उसमें इस तरह से बाधा डालती है। इसलिए हमें उन साधनों का प्रयोग जरूर करना है, लेकिन सीमित करना है, थोड़ा समय जितना हो सकता है उतना करें, बाद में उसका समय यूज नहीं करें, समय को आबाद करें, बाबा की याद में सफल करते रहें, तो आपको इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, मेरा समय बहुत अच्छा बीता हुआ है। कई कहते हैं मैं ज्ञान सरोवर में बाबा के घर में थी या था तो मेरी बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन जब मैं अपने घर में जाती हूँ, सेवा केंद्र पर जाती हूँ, अपने सेवा क्षेत्र पर जाती हूँ, तो मेरी स्थिति नीचे आती है। ऐसा क्यों होता है भाई बताओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जाओ, आपकी स्थिति जैसी यहाँ ऊंची है, श्रेष्ठ है, ऐसी स्थिति आपकी हर स्थान पर रहे, उसका सीक्रेट क्या है, उसका कारण क्या है, क्यों स्थिति हमारी नीचे आती है भाई बताओ, हैं जी। देखो यहाँ आप आए हैं विशेष लक्ष्य को लेकर, आपका अपने पर अटेंशन फुल है, इसलिए स्थिति भी बहुत अच्छी है। जैसे यहां से हम बाहर जाते हैं, रेलवे में बैठेंगे, ये मेरी सीट है, ये तेरी सीट है, वो है इधर उधर, फिर दूसरों को देखने पर जितना ध्यान जाता है उतना स्वयं पर ध्यान कम होता है, और हमारी स्थिति धीरे धीरे नीचे आने लगती है। अगर हमारा अपने पर फुल अटेंशन होगा तो आपकी स्थिति हमेशा अचल, अडोल और बहुत ऊंची स्थिति, एक स्थिति सदा रहेगी। आप चाहे किसी भी स्थान पर जाओ, बहुत अच्छी तरह से स्थिति आपकी रहेगी। तो एक स्लोगन हमेशा याद रखना, ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण जीवन में जैसी स्थिति वैसी स्तुति होती है। हर कोई चाहता है मेरी स्तुति हो, लेकिन जैसी स्थिति होगी वैसी ही स्तुति होगी, जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था आत्माओं के द्वारा और प्रकृति के द्वारा होगी। इसलिए मुझे बाबा के पास आने के बाद बहुत अच्छी स्थिति बनाना है, अवस्था बनाना है, इस लक्ष्य को पक्का रखें। ओम शांति है।